आप SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपने रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, SBS हिंदी के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री, अर्बन थियोरिस्ट और लेखक लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, संजीव सान्याल जी। संजीव जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्ते
संजीव जी। हाल ही में मैं बजट देख रहा था लोकसभा में, जो भारत में पेश हो रहा था। वहां उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा, ये बजट तो बिल्कुल नहीं था, ये तो शेरो शायरी थी प्रधानमंत्री मोदी की। आपसे जानना चाहूंगा, आप इतिहासकार भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, दोनों पहलुओं पर आपकी खूब तगड़ी पकड़ है। आपको लगता है कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन पे ही डिपेंड करता है?
देखिए, इतिहास हो या अर्थशास्त्र, इसमें दोनों में किसी दृष्टिकोण से इनको देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी इतिहास लिखा जाए तो उस किसी न किसी दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो हाँ, इंटरप्रिटेशन की इसमें बहुत महत्व है, लेकिन किसी एविडेंस पे ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये आप लीजिए या आर्कियोलॉजिकल तथ्य हो या आप जेनेटिक एविडेंस हो, जो भी हो, लेकिन इन किसी एविडेंस के ऊपर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आप ऐसे ही हवा में नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी चीज याद रखने के लिए।
अब मैं आपको ले चलता हूँ आपकी किताबों के आसपास, जो कि भारतीय सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। भारत के बारे में बहुत ही गंभीरता से आप लिखते हैं और पैशनेटली लिखते हैं। जब आप लिखते हैं, बात करते हैं, जब हम भारत की बाहर बात करते हैं, बाहर के मुल्कों में, देशों में बात करते हैं, तो डायस्पोरा, डॉक्टर्स और डिजिटल इंडिया ही नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने योगा और फिलोसफी को अब फोरफ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि देखो, भारत की ये देन थी, ये सबसे अमेजिंग देन है। आपके हिसाब से भारतीय सभ्यता का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है विश्व पर?
देखिए, भारतीय सभ्यता का तो प्राचीन काल से बहुत इम्पैक्ट रहा है दुनिया पर, लेकिन क्या हुआ था कि चूंकि हम लोग कॉलोनियल रूल के अंदर दबे हुए थे, तो क्या हुआ था, हमारा जो पहचान था वो था कि ये गरीब देश है, ये लोग हमेशा पिछड़े हुए हैं। तो 3-4 दशकों से क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारा ये इमेज बदलता गया है। तो पहले क्या हुआ, हम लोग गरीब से कम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटी स्पेशलिस्ट बने। अब क्या हो रहा है, हमारा भी जो हमारे अंदर जो गर्व है हमारे सभ्यता में, उस वो भी अब धीरे धीरे उभरने लगा है, क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस वापस आ गई है हमारे सभ्यता पे, हमारे संस्कृति में। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप होगा।
जो साम्राज्यवाद का दौर था, जिसे ब्रिटिश राज कहा जाता है, लगभग 150 वर्ष का जो समय है, उसमें कहीं दब से गए थे भारतीय, अपनी पहचान भूलने से लगे थे, और एक नई पहचान जिसे कोकोनट कहा जाता था, बाहर से ब्राउन अंदर से गोरे साहब पैदा करने की थी। डॉक्टर शशि थरूर ने भी कई बार ये कहा है कि साम्राज्यवाद के लिए ब्रिटेन की सरकार को माफी मांगनी चाहिए सारे देशों से, जो उन्होंने वहां पर तंगहाली कर दी थी।
मैं सहमत हूँ, हाँ, अपॉलोजी तो जरूर देना ही चाहिए, और ये कोई बहुत प्राचीन काल की बात नहीं है, अभी भी बहुत लोग जीवित हैं जो ब्रिटिश राज के को याद, जिनको याद होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना है कि हम में जो अपने में जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ती कैसी जा रही है। देखिए, जब पहले से ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कोई भारतीय जाता था, तो पहला क्या करता था, वो अपना नाम उसको बदल देता था, जिससे कि लोकल्स को, तो अगर उसका नाम बलविंदर है तो बैल हो जाता
है, जगदीप से जैग हो गए।
हाँ, लेकिन वो अब बदल गया है, क्योंकि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है। तो आपका नाम अगर बालकृष्ण स्वामी नारायण है, तो आप पूरा कहेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप में अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, जो पहले नहीं था।
जब बचपन में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते थे, दो अलग सब्जेक्ट होते थे। हाँ। लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिखाया कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कैसे सोचा आपने कि ये लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए?
ये जरूरी है, बहुत कारण है। एक तो है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि हिस्ट्री यानी इतिहास भूगोल के माध्यम से बदलती है, और भूगोल इतिहास के कारण से। सो ये दोनों एकदम ही मिले जुले सब्जेक्ट्स, इनको साइलोज में देखना गलत है। तो मैंने सोचा कि अगर हम इतिहास लिखें, क्यों ना इसको इसी तरीके से लिखें, क्योंकि क्या होता है, अभी हम इतिहास के जो टेक्स्ट बुक देखते हैं, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा जाता है। तो हिस्ट्री को दूसरे किस्म दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जैसे भूगोल के दृष्टिकोण से कि ये शहर कैसे बदले, हमारी नदियां कैसी बदली, हमारा जो समुद्र तट है हिंदुस्तान का वो सदियों से धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो अगर हम इसको भी अपने इतिहास में ले आए तो फिर इतिहास में जो रस होगा वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा।
आपने बात की शहरों की और मैं अभी हाल में ही एक खबर छपी थी जहां पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में ऐसा शहर था जो कि हड़प्पा की सभ्यता से पहले का है। और आपके हिसाब से भारतीय इतिहास की क्या वो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाने चाहिए?
देखिए, शहरीकरण हमारे इतिहास में काफी बार हुआ है, तो मतलब अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। सिरपुर की आपने कहा, लेकिन सिरपुर लेटर साइट है, हड़प्पन के बाद है। लेकिन आप हड़प्पन ले लीजिए, उसके बाद के ये आयरन एज के जो साइट्स हैं, उसके बाद सिरपुर जैसे साइट्स हैं, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे साइकिल्स आए हैं और गए हैं। और ये अगर अभी हम जो देख रहे हैं, फिर से हम लोग शहरीकरण जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो नया सा साइकिल है, लेकिन ऐसा साइकिल हमारे इतिहास में बहुत बार हुआ है।
जी, एक मुद्दा जो हमेशा से आपके दिल के करीब है वो है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई बातें जो आप करते हैं, कई बार अपने लेखों में भी लिखते हैं। भारत में लोग कहते हैं कि जो भारत असली भारत है वो गांव में बसता है, और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट गांव में जब होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। शहरों में जब तक स्मॉग ना आ जाए तब तक हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ही इस तरीके का चल रहा है, जो पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बेमौसम बरसात या बेमौसम गर्मी। आपके हिसाब से क्या ऐसी मुख्य बातें होंगी जो आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देना चाहेंगे कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान दें?
मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज को एकदम ही ध्यान देना चाहिए, और हमारे इतिहास में ये काफी बार हुआ है। आप देखें, जो हमारे सबसे पुराने जो शहर थे हड़प्पा के, वो एक नदी के किनारे थे, सरस्वती नदी। तो आज से 4000 साल पहले वो नदी सूख गई और फिर जलवायु में भी बदलाव आया, उसके कारण वो सभी शहर जो हमारे सबसे पहले शहर थे उनको छोड़कर लोग पूरे भटकते रहे। कुछ लोग गंगा किनारे चले गए, कुछ लोग साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ चले गए। तो हमारे इतिहास में ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा सिविलाइजेशन ही एकदम लुप्त हो गया। तो इसीलिए मुझे मैं सोचता हूँ इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए।
आपने शहरीकरण की बात की, तो आजकल एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, स्मार्ट सिटी। हर कोई नेता आजकल बोलता है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पहले जब हम सुनते थे, चुनाव होते थे भारत में 1990 के दौरान में, तो कोई कहता था कि मैं चंडीगढ़ को पेरिस बना दूंगा, वो भी स्मार्ट सिटी की ही बात कर रहे होते थे शायद उस समय पे, जो हमें समझ में नहीं आती थी। आपके हिसाब से भारत में स्मार्ट सिटी का उदाहरण क्या होगा और कैसे बनाई जा सकती है?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टर्मिनोलॉजी को, स्मार्ट सिटी को, दुख की बात है कि हर चीज पे डाला जा रहा है। इसका अंत में एक शहर स्मार्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि वहाँ स्मार्ट लोग रहते हैं। आप जितना भी कंप्यूटर लाएं, डायोड, बिग डेटा जो भी कीजिए, अंत में क्या है, हर शहर का जो पहचान है वो उसके सिटीजन से आता है। अगर स्मार्ट लोग वहाँ जाके बसेंगे तो वह स्मार्ट बनेगा। तो अंत में यही एक बात रह जानी चाहिए कि आप अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो उसका फोकस इसी पे होना चाहिए कि दुनिया भर से स्मार्ट लोग वहां जाके कैसे बसे।
अब मैं बात करता हूँ स्मार्ट इंडिया की। भारत में 2020 तक ऐसा क्या किया जाए आर्थिक रूप से कि निवेश बढ़े, और ऐसी क्या चीजें होंगी, ऐसी क्या मुद्दे होंगे जहां पर निवेश बढ़ेगा?
देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये जल्दबाजी से के कारण ही हर बार हम अटक जाते हैं। ये धीरे धीरे एक दो दशक लगेगा, लेकिन काम हो रहा है इस पे। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसे धीरे धीरे सुधारा जा रहा है, सिस्टमैटिकली सीक्वेंस करके करना चाहिए। तो आप तो जो कह रहे थे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, हाँ, इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल से काफी दब गया है। इसके लिए काफी सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काफी सारे कदम लिए हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये धीरे धीरे सस्टेन्ड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक दो साल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ फिर ठप हो गया। हमारा यही प्रॉब्लम था कि क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारी बैंकिंग सिस्टम अटक जाती है, और ये हमारे साथ अभी है। हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत बहुत समस्याएं हैं इसी कारण, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले बहुत बड़ा सा इन्वेस्टमेंट बूम हुआ था और उसका अभी हमको प्रॉब्लम्स उसी से आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है इसको सस्टेन कैसे करें, 10 साल 20 साल, इसी के बारे में सोचें।
अब मैं आपको आर्थिक निवेश से सांस्कृतिक निवेश की ओर ले जाता हूँ कि क्या ऐसी बातें हैं कि हमारे लिंकेजेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वो कायम रह सकें?
एक तो वैसे है ही डायस्पोरा के वजह से, दूसरी बात क्रिकेट के वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो आप कह रहे हैं जैसे भारतीय लेखक यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लेखक भारत जा रहे हैं JLF इवेंट्स पे, तो ये तो एक लेवल पे हो ही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लिंकेजेस हैं अभी हमको धीरे से, अभी भी जो है लिंकेजेस अभी बहुत सारे वो कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर और वो कॉमनवेल्थ के फ्रेमवर्क में अभी भी लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से अब वो समय निकल गया है, वो बहुत पहले का, अभी जो नई पीढ़ी है वो ये सब चीज़ें इनको मतलब क्रिकेट पे हाँ शायद ये ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें अभी पुरानी होती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो नए लेखक जो इंडिया में जो उभर रहे हैं उनको वो तो पोस्ट कॉलोनियल भी नहीं है, तो पोस्ट सोशलिस्ट हैं
जी।
तो मतलब उनके उनका जो नज़रिया है एकदम ही नया है, तो ये पुराना जो राइटिंग था इंडिया में वो पॉवर्टेरियन, बहुत दुख भरी कहानियाँ, वो प्रेमचंद टाइप के, और वो उस ज़माने के बॉलीवुड फिल्म जो थे, वो समय चला गया है। हमारा जो अभी नया जो नई पीढ़ी है, यंग एनर्जेटिक, उनका जो नज़रिया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। तो ये जो एनर्जी है उसको हम दूसरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम लोग उनके जो यंग एनर्जेटिक नए इनोवेटिव लिटरेचर आर्ट जैसा भी हो वो उनसे लिंकेज करना चाहते हैं। तो ये नया दौर होना चाहिए।
चलते चलते आखिरी सवाल, जो भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और लेखनी में इंटरेस्टेड हैं, लिखना चाहते हैं, चाहे इतिहास लिखना चाहें, चाहे फिक्शन नॉन फिक्शन लिखना चाहें, उनको आपकी तरफ से अपनी राइटिंग टिप क्या होगी?
मैं कहूंगा कि आप जो भी लिख रहे हैं एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि इंडियन लिटरेचर में एक बहुत प्रॉब्लम अभी तक रहा था कि मतलब बहुत ही ट्रेडिशन बाउंड था कि हाँ हमारे परदादाओं ने ऐसा लिखा या प्रेमचंद जी ने ऐसा लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा लिखा, तो हमें इसी ट्रेडिशन में लिखना चाहिए। 10 साल में क्या हुआ है कि एकदम नए किस्म के राइटर्स आए हैं, जैसे अमीश, चेतन भगत हो, देवदत्त पत्तनायक हो, जो भी हो, मैं इतिहास लिख रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी सारे, आप मेरे किताबें पढ़ेंगे तो देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक हिस्ट्री जो है उससे मैंने कहीं अलग है। तो ये जो ब्रेक हो रहा है, मैं कहूँगा कि डायस्पोरा भी इसे समझे कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो वो छोड़ के गए थे, वो भी बदल रहा है, और हम चाहेंगे कि डायस्पोरा इससे इंगेज करे, इस नए हिंदुस्तान से इंगेज करे।
संजीव, SBS स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। पूरा कार्यक्रम कैसे सुने ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।